जाओ भक्त ही ये अच्छी तरह से जानते हैं कैसे तुम्हारी रक्षा होगी। मैं, मेरा हृदय नहीं है यहां, मैं रक्षा नहीं कर सकता। वेद में कहा गया जस देवी पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, भगवान में जैसी भक्ति है उससे बल्कि अधिक गुरु में भक्ति होना चाहिए, सदगुरु में। कोई भी मंत्र इत्यादि जपने में, ध्यान लगाने में, पूजन करने में, आराधना करने में पहले गुरु की का अध्ययन होता है। जिसका गुरु नहीं है किसका अध्ययन करेगा? कहा जे गोविंद का तो गोविंद जी है नहीं, उनका हृदय ही नहीं उनके पास। ये गोविंद जी हैं, इनका हृदय इनके पास नहीं है। कोई जाएगा कहेगा जी कृपा करो, तो हमने कृपा तो पूरी दे दी भक्तों को, गुरु को, गुरु मेरा स्वरूप है और की तो बात छोड़ो। कृष्ण जब इस जगत में आए तो अपना गुरु बनाया, बनाया कि नहीं? किसको गुरु बनाया? सांदिल्य ऋषि को, जिन्होंने मंत्र दिए। सांदीपनी मुनि तो कला वाले हैं, वो 64 कला, वे गुरु नहीं है ना? गुरु उनके हैं सांदिल्य, उनके कुल गुरु। नंद बाबा उन्हीं के शिष्य हैं, यशोदा मैया उन्हीं की शिष्य हैं, कृष्ण उन्हीं के शिष्य हैं और जितने ब्रजवासी हैं उनके शिष्य हैं। और सांदीपनी मुनि कौन है? ये समस्त धनुर्वेद 64 प्रकार की कलाएं, कैसे राज्य शासन करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, समाज के प्रति कैसा हमारा ये रखना चाहिए, इस प्रकार की 64 कलाएं जो हैं उन्होंने दी। तो वो गुरु हैं एक तरह से शिक्षा गुरु, वो किंतु पारमार्थिक शिक्षा गुरु नहीं, वो सब पारमार्थिक नहीं। जैसे द्रोणाचार्य गुरु हैं एकलव्य के, किस चीज के गुरु हैं? परमार्थिक गुरु नहीं। रामचंद्र के गुरु कौन हैं? वशिष्ठ जी। दशरथ जी किसके शिष्य हैं और सीता जी किसकी शिष्या हैं? वो वशिष्ठ जी की। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनकी पत्नियां और उनके महाराज दशरथ के 21 पीढ़ी से और ऊपर, प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से सूर्यकुल के अकेले गुरु हैं वशिष्ठ जी। कोई कोई कहते हैं कि स्त्री उससे गुरुमुख नहीं होगी जिसे पति हुआ है, नहीं तो गुरु बहन हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी बात एकदम भूल है। गुरु किया जाता है आत्मा की उपलब्धि से, परमात्मा की उपलब्धि से। आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म ने से मतलब नहीं है। इसलिए ये गुरुकरण होना चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। बिनु गुरु भवन भी तरै न कोई, यो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान भी कोई यदि ज्ञानी हो जाए, इन दोनों के लिए नहीं कहा गया। उनका तो गुरु है, ब्रह्मा जी का गुरु है और शंकर जी का भी गुरु है। शंकर जी के गुरु जानते हैं? अधिकांश लोग नहीं जानते हों। कृष्ण के जो भैया हैं ना, बड़े भैया बलराम, उन्हीं का नाम शंकरसन है। शंकरसन से इन्होंने भगवान का मंत्र दिया। और दूसरी गुरु उनकी है पूर्णिमा जी, कान में गोपाल मंत्र और काम गायत्री दिया तो शंकर जी गोपी बन गए और गोपी बन करके कृष्ण की आराधना रासलीला दर्शन कहा। किंतु गोपियों ने उनको ये नहीं बतलाया संबंध। गोपियों ने उनको पकड़ा रासस्थली में, गोपी तो बन गए हैं, कैसे गोपी बने? जोगमाया देवी ने उनकी आरती को लक्ष्य करके ब्रह्म कुंड वृंदावन में उसमें डुबा दिया और सुंदर गोपी बन गए। कहा जे यहीं पर बैठ करके रास देखना, तो वो रास देख रहे थे। गोपियां ने देखा आज तो रास में उल्लास नहीं है। कृष्ण देखा जे आज रास में उल्लास नहीं है। फिर कैसे उल्लास हो? कोई विजातीय व्यक्ति इसमें है। कौन है? गोपियां ढूंढती 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 वहां पर झाड़ियों के अंदर देखा एक बड़ी सुंदर नवेली गोपी बैठी है। उसको पूछा, तुम्हारा गांव कौन सा है? जोगमाया ने कभी गांव बतलाया नहीं था, नहीं तो बतला देते ये बरसाने गांव है, किंतु बतला नहीं सका। अरे तेरे खसम का नाम क्या है? तो खसम किसको? खसम तो उनका है नहीं, तो खसम का नाम नहीं बतला सकती। तेरे देवर का नाम क्या है? कुछ नहीं बतला सकी। कहे यही बीजाती है, बस गुलचे से गाल को मार करके फुला दिया और शंकर त्राही त्राही करने जोग मैया बचाओ। तब आई कृष्ण और गोपियों से, कहा जी हमने इसको वर दे करके गोपी बनाया था, आप लोग कृपा करें। तब कृपा किया तो गुरु जी के भी, हमारे शंकर जी के भी गुरु कौन है? जोग माया जी हैं, और हैं शंकर सन बलदेव भैया। ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? स्वयं नारायण है। नारायण ने उनको ये मंत्र दिया। इस तरह से ऐसा कोई नहीं है जिसके गुरु नहीं है। और तुम बिना गुरु के ही भगवान को पालोगे? तुलसीदास जी के गुरु कौन है? नरहरी जी। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य हैं। विट्ठलाचार्य कौन है? उनके शिष्य हैं। शिष्य परंपरा प्रारंभिक काल से चली आ रही है भाई। रामानुज, मध्व, विष्णु, स्वामी, निम्बादित्य इत्यादि सभी गुरु किए हैं। और तुम भूई फोड़ कहां से? भूई फोड़ कहां से निकल गया? भूई फोड़ जानते हैं ना, बरसात में वो छत्ते निकल जाते हैं, भूई फोड़ छत्ते जानते हैं ना, मेढक का छत्ता सफेद सफेद, ऐसे तू भूई फोड़ कहां से व्यक्ति बन गया? तुम्हारे बाप के तो जरूर गुरु होंगे, किंतु तुम्हारा गुरु नहीं चाहिए और उपदेश राज गुरु नहीं होंगे, इसलिए ऐसी बात नहीं है। सारे शास्त्र कहते हैं जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादान नगति कुतोपि। जैसे तुम्हारे गुरु नहीं है तो भगवान को कभी लाख कोटि अरब खरब जन्मों में भी नहीं पा सकते। गुरु वह है जो कृष्ण को प्रदान कर देता है, अपने हृदय में बंद करके रखता है और योग्य शिष्यों को दे देता है। जो अनुगत्य भीन है, छूटे हुए सांड की तरफ में चारों तरफ में घूमते फिरते हैं, जिनका कोई पगहा नहीं है, पगहा ने आगे नाथ ना पीछे पगहा, बैलों को नथ दिया जाता है और रस्सी रहती है, और जो शिष्य ऐसे हैं जो आगे नाथ नहीं है, पगहा नहीं है, कंट्रोल का कुछ करने का नहीं है, वो अपने काम के लिए गुरु को मान लेते हैं, यथार्थ में गुरु का अनुगत्य नहीं है, तो भगवान को कदापि नहीं पा सकते, उनको सुख और शांति नहीं होगी। इसलिए श्रीमद्भागवत में गीता में देखते हो अर्जुन ने क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने धर्म की रक्षा के लिए सोचा था ये लड़ाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, भीख मांगने कहीं निकल जाऊंगा, किंतु अपने कुटुंबियों को स्वजनों को मारूंगा नहीं। और इधर आप कहते हैं कि तुम्हारा धर्म से कोई संबंध ही नहीं, ये बातें अधर्म की तरह में बातें करता है, तुम मार देगा किसको मारेगा, आत्मा अजर अमर है और शरीर तो मरा हुआ है, मारेगा क्या? बुद्धिमान जैसा बात कर रहा है मूर्ख। तो उन्होंने कहे गुरुदेव आपके चरणों में मैंने बागडोर सौंप दी, हमारे रथ के सारथी थे अब तक, अब मैंने मन का सारथी का आपको बना दिया, आप गुरुदेव हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। तब कृष्ण ने गीता की बात उनको समझाई, शिष्य से अहम साधिमा त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा प्रपन्न हुआ और मैं तुम्हारा शिष्य हो गया। शिष्य किसको कहते हैं? गुरु का शासन जो मानता है उसको शिष्य कहते हैं। मंत्र लेने वाला ही नहीं, मंत्र तो बहुत ले लेते हैं, किंतु गुरु का जो शासन मानता है उसको शिष्य कहते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं? कच्ची मिट्टी को कुम्हार जैसे तैयार करके मूर्ति बना देता है, घड़ा बना देता है, वैसे ही कच्ची मिट्टी शिष्यों को लेकर के उनको मारपीट शासन करके हाथ से दबा दुबा करके और उसको सत शिष्य बना करके कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है। इस शासन को जो नहीं मानता वो गुरु नहीं, शिष्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम शंकर की आराधना करेंगे, देवी जी की आराधना करेंगे, हम गणेश जी की आराधना करेंगे। अच्छा भैया तुम लोग किस लिए आराधना करना चाहते हो जरा समझो। गणेश जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी, शंकर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, दुर्गा मैया बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के जो कुछ हम धन धान्य पूजा जहां जो मांगेंगे वो दे देगी बहुत जल्दी से आसानी से, इसलिए हम करते हैं। अरे उनकी भक्ति के लिए तू करती है या करते हो किस लिए? शिव जी का चौकसा जो हम दबाते हैं किस लिए? शिव जी प्रसन्न हो करके हमें अपनी जो मन की मुराद है उसको पूरा करें, ये भक्ति नहीं है। भक्ति शब्द का संबंध किससे है? भगवान से है। अब ये देखो दुर्गा जी परमात्मा हैं कि नहीं हैं? परमात्मा उनको तो कहीं नहीं कहा गया। गणेश जी परमात्मा हैं, सबके हृदय में बैठने वाले, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ये लोग सृष्टि स्थिति प्रलय कर देंगे परमात्मा कहलाएंगे या भगवान कहेंगे? भगवान शब्द से संबंधित ये भक्ति है। जब वह भक्ति भगवान से संबंधित हो, कृष्ण से संबंधित हो, राम से या किसी अवतार से, तब वो भक्ति होगी, अन्यथा भक्ति नहीं होगी। भगवान के अतिरिक्त, मुकुंद के अतिरिक्त, गोविंद जी के अतिरिक्त, ये एक ही तत्व हैं, अलग अलग नहीं है, नाम अलग हैं, अनायासी मुक्ति दे देंगे। किंतु संसारिक जो धन जन पुत्र परिवार, ये भगवान कृष्ण या भगवान का कोई भी अवतार नहीं देगा। हरिष्ये तद धनम सनई, जिसे भाव बंधन होता है, संसार में बंधन होता है, जन्म जन्म उसमें लपटाते रहते हैं और भगवत प्रीति नहीं होती, भगवान जान बूझ करके वो नहीं देते, उसे रास्ते का फकीर बना देते हैं, उसे स्ट्रीट बेगर बना देते हैं। इसलिए लोग कृष्ण का भजन नहीं करते, डरते हैं, डरते हैं। इसलिए हमें परमार्थ तो दे देंगे, गोलोक वैकुंठ में नित्य आनंदमय स्थिति दे देंगे, किंतु रुपया पैसा तो देंगे नहीं, धन नहीं देंगे, सुंदर वर नहीं देंगे, सुंदर स्त्री नहीं देंगे। इसलिए उनके भजन से कतराते हैं, नहीं करते। और कृष्ण क्या करते हैं, पहले ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके जो सड़ गया है भीतर में उसको बाहर करके रिपेयर कर देते हैं। जब तक संसार की वासनाएं हैं तब तक हमारा चित्त निर्मल नहीं है, फिर गोविंद के चरणों में हमारा कैसे प्रीति होगी? कदापि नहीं होगी। इस चीज को समझिए, जब तक की संसार की कोई भी कामना वासना बाकी है भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। अब हम आरंभ करते हैं उदाहरण के साथ इस चीज को समझाने के लिए। तब ये समझो शंकर के भी आराध्य ये गोविंद जी हैं, दुर्गा काली इत्यादि के भी आराध्य देव ये गोविंद हैं। ये दुर्गा जी हैं कौन, काली ये हैं कौन? कृष्ण की पराशक्ति का नाम श्री राधिका है, उन्हीं की छाया का नाम महामाया या दुर्गा या काली है। ये जागतिक चीजों को देंगी, इसलिए ये उन त्रिपुंडधारियों का माला पहनती हैं, जिह्वा बाहर करके। वो कहती हैं कि कल तक तू मुझे मैया मान रहा था, मैया मुझे मान रहा था, दुर्गा मैया, सरस्वती मैया, काली मैया कहता था, और आज तुम जो शिवो हम यदि हो जाएगा, शिवो हम माने क्या, मैं शिव बन गया,
तो मैं तेरी बामा बन जाऊंगी। तलवार से खड़ग से काट करके मुंडमाला पहनती हूँ। शंकर जी भी ऐसे करते हैं। इसलिए इन चीजों को समझो, जो जगत का आराध्य एकमात्र गोविंद जी हैं, उन्हीं को मुकुंद कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को राधानाथ, गोविंद, माधव, मुरारी, राम, ये सब उन्हीं का नाम है अलग। राम किस लिए नाम है? रमन्ते योगिना अनन्ते, समस्त जीवों के हृदय में रमण करते हैं, इसलिए ये राम है। कौन राम? जो रमण करते हैं। इसमें भी कुछ बात है, रामचंद्र जी सर्वत्र रमण करते हैं, ये बात तो ठीक है, किंतु गोपियों के हृदय में और राधा जी के हृदय में वो दासरथी राम रमण करेंगे कि नहीं? इस चीज को नहीं। इसलिए यहां राधा रमण कृष्ण ही का नाम यहां पर हरे कृष्ण में हरे राम में है। इस चीज को समझ करके ऐकांतिक कृष्ण में भक्ति होनी चाहिए इस गोविंद में। अब हम चलते हैं उदाहरण के लिए। मैंने बतलाया था, जब समाप्त होने को होगा तो हमको याद दिला देना। हो गया है समय? देखो, एक लड़का था 5 वर्ष का, बड़ा ही सुंदर सुकांत, बहुत ही, उसका नाम था ध्रुव। उसके पिता का नाम उत्तानपाद था। एक दिन पिताजी गद्दी पर बैठे हुए थे, राजगद्दी पर, तो उस महाराजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। सुनीति बड़ी वाली रानी का नाम था, उसी का पुत्र ध्रुव था। सुरुचि, सुनीति माने सुंदर नीति, जिसको भक्ति है वो सबसे बड़ी सुंदर नीति है, इससे बढ़कर के नीति नहीं। और सुरुचि जिसको जगत में अच्छी अच्छी संसारिक रुचियां हैं, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा संसार, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब अच्छी 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 अच्छी, इसको कहते हैं सुरुचि। उसका पुत्र का नाम, उसके पुत्र का नाम था उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव देखा जब पिताजी गद्दी पर बैठे हैं, सुरुचि जो थी बड़ी सुंदरी थी, अभी 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 नवेली ब्याह करके आई है ना, इसलिए बड़ी सुंदरी है। राजा को प्रसन्न कर दिया उसने अपनी सेवा से, भौतिक सुखों से, राजा भी भौतिक, पारमार्थिक साधन देखने में, किंतु यथार्थ परमार्थ का नहीं। ध्रुव वहां पर उपस्थित हुआ, देखा जे उत्तम उसका छोटा भैया राजा की गद्दी गोदी में बैठा है, बड़ी प्रसन्न होकर के पिताजी की गोदी में चढ़ना चाहा, और जैं ही चढ़ना चाहा, सौतेली मैया वहां पर, सुरुचि वहां पर खड़ी थी, उसने कहा जे बेटा तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, पहले तुम मरो और मर करके हमारे कोख से जन्म ग्रहण करो, तब फिर अधिकारी हो सकता है। सुनीति के गर्भ से या दूसरे के गर्भ से पैदा हुआ बेटा पिता के गोद में नहीं बैठ सकता है और राज्य का अधिकारी नहीं सकता है, मर तो जाओ और मर कर हमारी गोद, हमारे कोख में पैदा हो, तब फिर। उसको ऐसा लगा जैसे कोई सांप हो काला और उसको किसी ने छेड़ दिया और वो खड़ा हो जाए, ऐसी ये बात उसको हृदय में चुभ गई। मारने से भी बात की चोट अधिक होती है, मारने का चोट सहा जा सकता है, किंतु भैया वो बात की चोट है ये कभी नहीं सही जाती। वो वहीं से रोता हुआ उल्टे मैया के पास में आया और रोने लगा, पूछा वो बतला नहीं रहा, चोल रो रहा है। सखाओं ने उनके बतलाया जो पिता की गोद में बैठना चाहता था, उन्होंने नहीं बैठाया, वो देखते रह गए, उनकी इच्छा थी कि बैठा लूं किंतु बैठाने नहीं दिया सौतेली मैया ने। अरे बेटा तुम इसके लिए रो रहा है, अरे तुम्हारे भैया तो हैं, तुम्हारे भैया हैं, वो वन जंगल में रहते हैं, उनको बुलाएगा ना वो आ जाएंगे। और तुम जो चाहेगा ये राज्य क्या है, अखिल विश्व ब्रह्मांड का, होल यूनिवर्स का साम्राज्य तुम्हें दे सकते हैं, कोई चिंता मत करो। इसके लिए रो रहे हो तुम, मेरे भैया कहां मिलेंगे? अरे जमुना के तट पर चले जाओ, एक मधुबन है वहां चले जाओ, तुम मिल जाएंगे। अच्छा वो समझी, इतनी नहीं समझी कि इतना दृढ़ होगा। मैया सो गई और वो सोया नहीं, 5 वर्ष का लड़का चल पड़ा पासी में मधुबन, जमुना के किनारे जिसको अब मथुरा कहते हैं, वहीं पर आज भी ध्रुव घाट है। ध्रुव घाट पर उसने स्नान किया तो बुलाए तो कैसे, तो जानता तो हूं नहीं। इतने में भगवान ने उनको नारद ऋषि को भेजा, पहले परीक्षा कर लेना तब फिर मंत्र देना, कैसे उपासना करने से मैं मिलता हूं बतला देना। देखो यहां पर भी गुरु की आवश्यकता, जो भगवान को पाना चाहता है सचमुच, भगवान अपने प्यारे भक्तों को जो भगवान को जानता है तत्वतः उनको भेज देते हैं। नारद ऋषि आए, अरे बेटा तू कहां घर से निकल करके आया, उत्तानपात का तू लड़का है मैं जानता हूं, और छोटा सा बच्चा है, तुम्हारे अंतर में इतना क्रोध, अरे कहीं यहां पर कभी शेर खा जाएगा, भालू खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे, अभी छोटा सा बच्चा, घर में लौटो, चलो मैं दे आऊं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो क्या करेगा, बिना हरी से मिले, हमारे भैया हैं, मैं मिले नहीं उनको, जाने इसका प्राण चला जाएगा, प्राण चला जाए, किंतु मैं उनको बिना मिले हुए नहीं रहूंगा। कहीं ये तो बड़ा हठी लड़का है, तो उसके मंत्र कान में दे दिया। क्यों कान में दिया, हमने एक पहले दिन बतलाया, कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्र दिया। मंत्र देते ही एकदम बदल गया वो लड़का, और उन्होंने उपासना की विधि दी। मंत्र का अर्थ क्या है ये जानना चाहिए, गुरु बतलाएगा। मंत्र का अधिष्ठात्री देवता कौन है, मंत्र लेने से ही नहीं हो गया, मंत्र का देवता कौन है उसका स्मरण करना पड़ेगा ध्यान, और मंत्र का अर्थ क्या है साधारण रूप में जानना पड़ेगा, उसके प्रति शरणागति होगी, प्रपन्नता होगी, ये 5 आत्मनिवेदन होगा, जो प्रभु ही हमारी सारी आकांक्षा को पूर्ण करेंगे और दूसरा कोई नहीं जो कर सकता है। इस तरह से उस मंत्र के देवता के प्रति आत्मसमर्पण कर करके संपूर्ण रूप से आत्मनिवेदन कर देना होगा, तब मंत्र का फल होता है, अन्यथा ऐसे ही नहीं हो जाता। गुरु जी भी नहीं जानते, शिष्य भी नहीं, और गुरु भी डूबे और शिष्य भी डूबा, ये सबको जानना आवश्यक है। उन्होंने सारी व्यवस्था उसको कर दी और सारी बातों को बतला दिया, तुम्हारे मंत्र के अधिष्ठात्री देवता नारायण हैं, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में है, उसके द्वारा सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उन श्याम रूप है, इस तरह से सभी बतलाया। जाओ तुम जमुना जी में स्नान करके ऊंची भूमि पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाना, और तुम भजन को इस प्रकार से आदेश दे करके अपने तो चले गए, और उसको आशीर्वाद दिया जो तुम्हारा सफल हो, मंगलम भवतु कल्याणम भवतु, तुम्हारी आशा पूर्ण हो कह करके चले गए। अब फिर क्या हुआ, आरती के बाद में हम लोग इसको हम सुनाएंगे। गुरु जी ने जैसा निर्देश दिया था अक्षर सब उसका पालन किया। मधुबन में ऊंचे टीले पर विराजमान हुए और खाना पीना सब छोड़ दिया, पानी पीना भी छोड़ दिया। 7 दिनों के बाद में एक बार सूखी पत्तियों को लेते, इसको छोड़कर के 15 दिन के अंदर में वो पानी केवल एक बार लेते, 15 दिन अंतर से। कुछ दिनों के बाद में पानी भी छोड़ दिया, और एक महीने के बाद में एक बार श्वास लेते थे। इतनी कठोर तपस्या आरंभ की। गुरु जी के आदेशानुसार में उनका ध्यान अपने इष्ट देव का, सारी सब चिंताओं को छोड़ दिया। जितने उनके संसार के विचार थे सबको छोड़ करके एक निष्ठ चित्त लगा दिया। हमारे जैसा नहीं कि जब गुरु का मंत्र जपते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है, एकाग्र कर लिया और मंत्र पर एकदम निष्ठा रख करके, विश्वास रख करके करने लगे। 6 महीने के अंदर में ब्रह्मा जी का भी आसन डोल गया, ये हमारा पद तो नहीं ले लेगा। देवताओं की का श्वास भी बंद हो गया और भगवान उनके हृदय में आविर्भूत हो गए उसकी कठोर तपस्या से। जब वो भीतर में गए, भीतर से फिर वो बाहर निकल करके उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म हो धारण करके खड़े हो गए। भीतर में विकल हो गए, आंख खुला था, देखा ये सामने भगवान का दर्शन इन प्राकृत नेत्रों से नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। किंतु भगवान कभी कभी दया करके भक्तों की आसक्ति को बढ़ाने के लिए, उत्सुकता को बढ़ाने के लिए ऐसा कर देते हैं। क्षण मात्र में प्रकट हुए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो या कर करके अंतर ध्यान हो गए एक मिनटों में, सेकंड में उनका अरमान उन्हीं के अंदर में रह गया। उन्होंने कहा 36,000 वर्ष तक केवल अपने पिता की ही नहीं, सारे पृथ्वी का तू राजा बनकर के सम्राट होकर के रहेगा और इसके बाद में हमारे परम धाम को आएगा। जो ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, बिल बिला करके रोने लगा। मैंने चिंतामणि पाई जो से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसका मर्म मैंने समझा नहीं। एक फूटी हुई कौड़ी, कांच का टुकड़ा मैं लेकर के उसी में प्रसन्न होगा। 36,000 वर्ष का राज्य ये क्या है, कांच का टुकड़ा है, और भगवान के चरणों की सेवा मुझे मिल सकती थी। 36,000 मेरा समय व्यर्थ का जाएगा संसार के भोग में, उसकी उपलब्धि उन्होंने की और बड़े रोने लग गए। भगवान ने एक छत्र राज्य दिया और उसके बाद में अपना धाम देने की भी बात कहे। क्यों, यदि कोई भगवान का नाम लेकर के भजन करते हुए कोई संसारिक चीज की कामना करेगा, अर्थ की, पुत्र की, संपत्ति की, निरोग होने की, स्वर्ग की, मुक्ति की, तो भगवान का नाम चिंतामणि है। भगवान ने सारी शक्ति इन नामों में दी है, इस विश्वास के साथ में रखो, भगवान का नाम करो। कैसे, भगवान के नाम से, भगवान के स्वरूप से भी भगवान का नाम बड़ा है किसी अर्थों में। भगवान नहीं पूरा कर सकते किंतु उसको उनका नाम पूरा कर देगा। भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे किंतु व्यभिचारी से व्यभिचारी व्यक्ति भी भगवान का नाम ले सकता है। नाम में और नामी में अंतर नहीं है। नाम की सारी शक्तियां, सारी लीलाएं, सारा माधुर्य, सारी कृपा सब नाम में है, समझो। इस प्रकार से नाम करो, निरअपराध होकर के संबंध ज्ञान के साथ में शुद्ध नाम करो। तो ये इनकी भक्ति तो थी, भगवान को प्रसन्न किया नारद जी की कृपा से, किंतु वो उनको वह फल नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला, कुछ संसारी कामना थी, अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं हो सके। केवल भगवान को प्रसन्न करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं उन्होंने नहीं किया, कुछ अपना कुछ लाभ, जो मैं राजा बन जाऊं, पिताजी की गद्दी मिल जाएगी, इसलिए ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये कर्म मिश्रा भक्ति है। ऐसी भक्ति हम लोगों का उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु ऐसी भक्ति देने के लिए नहीं आए, एक अद्भुत तरह की भक्ति देने आए। और थोड़ा सा इसे आगे बढ़िए, ये अन्नाभिलाषा श्लोक की कसौटी पर खरा ये नहीं उतरे ध्रुव जी। संसारी कामना मत करो, संसारी कामना छोड़कर के कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए ही तुम ये भजन करो, और नहीं तो करेगा तो ठग जाएगा। जो कुछ भी चाहेगा वही हो जाएगा, जो चाहेगा, किंतु मत चाहो। दूसरी भक्ति प्रहलाद महाराज जी को देखो। प्रहलाद जी हैं, भीष्म पितामह हैं, ये सब लोग हैं।